सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला था, आस्तिक को पूरा तो करना ही था। आस्तिक अपनी जगह से खड़ा होता है और एक गहरी सांस छोड़ता हुआ आकाश के केबिन में चला जाता है। आकाश इस समय अकाउंट की फाइलों के बीच उलझा हुआ था और सारे अकाउंटेंट्स उसके सामने ऐसे खड़े थे जैसे कि गुनहगारों ने कोई गुनाह किया हो और जेलर उसे सजा सुनाने वाला हो। आकाश ध्यान से अकाउंट की फाइल देख ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। वो चेहरा घुमाकर देखता है तो सामने मुस्कुराता हुआ आस्तिक उसे देखते हुए कहता है, घाटे का सौदा नहीं करता हूँ मैं, जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो मिलना थोड़ा मुश्किल है। पिछले 5 सालों से मेरी कंपनी लॉस में नहीं गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है राजा साहब कि आपकी कंपनी में अभी तक एक लॉस नहीं मिला है। वो क्या है ना, मुझे भी खाली प्रॉफिट के साथ ही रहने की आदत है। आकाश भी अपनी जगह से खड़ा होता हुआ वो आस्तिक को देखकर कहता है। आस्तिक के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए हाँ में सर हिलाता है। वो अपने हाथ के इशारे से सबसे पहले तो केबिन में मौजूद उन जिंदा लाशों को वहां से जाने के लिए कहता है, तो वो सारे आदमी वहां से 1 मिनट में ही भाग जाते हैं, क्योंकि आस्तिक का खतरा जितना उन लोगों ने देखा हुआ था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक तो आकाश लग रहा था। आस्तिक आकाश के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी दोनों जेब में हाथ डालते हुए आकाश को देखकर कहता है, अगर तुम्हें मेरा प्रॉफिट इतना ही पसंद आया है तो इस प्रॉफिट में अपनी भी थोड़ी भागीदारी दो। हमारे नए प्रोजेक्ट की मीटिंग मुझे अटेंड करनी थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ। और आप ऐसा क्यों चाहते हैं राजा साहब, आकाश आस्तिक से सवाल करता है। तो आस्तिक हंसते हुए कहता है, क्योंकि अब इस कंपनी के मालिक तुम हो और इसके बारे में हर डिसीजन लेने का हक है तुम्हें। अब जबकि तुम ये देख रहे हो कि मैंने कंपनी को इतना प्रॉफिट दिया है, तो मैं इस कंपनी के नए सीईओ से एक प्रॉफिट की उम्मीद तो कर ही सकता हूँ ना, या फिर मैं ये समझूं कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मॉल में भूमि गाड़ी से उतरकर सीधे उस स्टोर पर जाती है जहाँ पर उसके लिए साड़ी पहले से ही ऑर्डर करके रखी जा चुकी थी। भूमि सीधे जाकर काउंटर पर मौजूद लड़की से कहती है, एक्सक्यूज मी, मेरा एक पैकेज रेडी होगा। वो लड़की मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है, कहती है, जी मैडम, मैं चेक कर लेती हूँ, प्लीज़ आप मुझे स्लिप दिखाएंगी। भूमि ने अपने पर्स में से एक छोटी सी स्लिप निकाली और उस लड़की की तरफ पढ़ा दी। वो लड़की स्लिप देखकर भूमि से कहती है, जी मैडम, आपकी साड़ी रेडी है, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। भूमि वहाँ लगी एक चेयर पर बैठ जाती है और अपने पैकेट के आने का इंतज़ार करती है। वो यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाकर उस स्टोर को देख रही थी। एक से एक डिज़ाइनर ड्रेस उस फैशन हाउस में लगे हुए थे और एक से एक ड्रेस दिखने में ही महंगी नज़र आ रही थी। भूमि उन सारी ड्रेस को देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक पुतले पर गई जिसने एक क्रीम कलर का फूलों की कढ़ाई वाला हल्के रंग का लहंगा पहना हुआ था। वो ड्रेस दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि भूमि उस ड्रेस को एक नज़र में देखती ही रह जाती है। वो धीरे से खड़े होकर उस ड्रेस के पास आती है और उसे देखने लगती है। सच में वो ड्रेस अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। फुल स्लीव्स के साथ गर्दन के पास गुलाब के फूलों की बहुत सुंदर कढ़ाई हो रखी थी। भूमि ने वहाँ खड़ी एक सेल्स गर्ल से पूछा, एक्सक्यूज मी, ये ड्रेस कितने की है? आई एम सॉरी मैडम, ये पीस बिक चुका है, सेल्स गर्ल्स ने कहा। तो भूमि का खिला हुआ चेहरा थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो उस ड्रेस को देखते हुए कहती है, कोई बात नहीं, वैसे ये लहंगा बहुत खूबसूरत है, पहली नज़र पर ही इस पर दिल आ गया था। सेल्स गर्ल भी कहती है, जी मैडम, ये इस लहंगे की यही तो खासियत है, ये अपने आप में इकलौता पीस है, पूरे राजस्थान में आपको इसकी दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी। तभी तो जिन्होंने इसे खरीदा है उन्होंने तो इसका प्राइस भी नहीं पूछा है, बस सीधा पैक करने के लिए कह दिया है। प्राइस पूछना राजकुमारी बबीता की शान के खिलाफ है। किसी खूबसूरत चीज़ का प्राइस तो छोटे मोटे लोग पूछा करते हैं, और ख़ासकर ऐसे लोग जिनकी औकात नहीं होती है उस चीज़ को खरीदने की, फिर भी मुंह उठाकर चले आते हैं, लेना वेना कुछ होता नहीं है, बस दाम पूछ पूछ के लोगों का टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ये आवाज़ थोड़ी घमंड से भरी हुई लग रही थी। भूमि ने पलट कर पीछे देखा तो उसके सामने एक लड़की नीलेंथ ड्रेस में खड़ी थी जिसके बाल सिल्की थे और स्ट्रेट किए हुए थे। मुंह पर भर भर कर मेकअप पोता हुआ था और लिपस्टिक तो ऐसा लग रहा था वो खाकर आई है। वो स्टाइल से चलते हुए भूमि के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपनी एक हाथ की उंगली से भूमि को थोड़ा सा ऐसे साइड करती है जैसे कि भूमि कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई गंदी चीज है। उसके बाद वो उस ड्रेस के पास जाती है और सेल्स गर्ल से कहती है, प्लीज इसे थोड़ा सैनिटाइज भी कर देना,
पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं और अपनी नजर कीमती चीजों पर डाल देते हैं। भूमि को पता चल रहा था कि वो उसकी बात कर रही है और वो इनडायरेक्ट उसकी बेइज्जती कर रही है। भूमि ने उस लड़की को घूरते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। राजकुमारी बबीता ने भी भूमि की तरफ चिढ़ती हुई नजर से देखकर कहा, एस, एक्सक्यूज मी, तुम साइड हटो। तुमने जितनी सस्ती सी साड़ी पहनी हुई है ना, उसी से पता लग रहा है कि इस ड्रेस को खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है, तो इसके आसपास भी मत भटकना। किसी की इतनी औकात नहीं जो मेरी बीवी को उसकी औकात दिखाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो स्काई भी पूरा दम रखता है उस इंसान को आईना दिखाने का। ये आवाज इतनी दमदार थी कि उस जगह मौजूद हर एक शख्स सहम जाता है। भूमि भी हैरानी से पलटकर दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां पर आकाश खड़ा था और वो स्टाइल से चलकर अंदर आ रहा था। आकाश को अपने सामने देखकर बबीता भी हैरान हो जाती है। उसकी पर्सनालिटी से तो बबीता पहली नजर में ही इंप्रेस हो गई थी।